ओम शांति। ये है 23/10/90 का प्रातः क्लास, 9 नंबर के रजिस्टर में 95 पेज, नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। पुरानी दुनिया की बात छोड़ो, नए विश्व की और उसकी भी नई दुनिया, उसके जो मालिक बनने वाले हैं, बालक सोई मालिक बनते हैं, रूहानी बच्चे, जिस्मानी बच्चों के प्रति नहीं, देहभावनिक की स्टेज में रहने वाले बच्चों के प्रति नहीं, रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चों के प्रति बाप बैठ समझाते हैं, खड़े होके नहीं समझाते हैं, न लेटे लेटे, बाप बैठ समझाते हैं। जरूर किसी तन में ही बैठेंगे, ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं, ऐसे नहीं कि आके चले गए हैं। बाप आए हैं किस लिए? कोई एम ऑब्जेक्ट? बेहद का वर्षा देने। ये बेहद की विश्व की बादशाही का वर्षा देने का एम ऑब्जेक्ट बाप का पूरा नहीं हुआ है, जो आए हों और आकर के चले गए हों, और हम बच्चे अपने आप वर्षा लेते रहेंगे, नहीं, हम लायक नहीं थे, चले नहीं गए हैं, लेकिन हम नालायक थे ये साक्षात्कार कराने के लिए, ये आंख मिचौली का खेल किया। लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, हे प्रभु, ये सामने वाले से कहा जाएगा या दूर होगा उससे कहा जाएगा, हैं? दूर वाले से कहा जाएगा हे प्रभु, जो सामने होगा उसी से तो कहेंगे हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, माना ना लायक हूं। वर्षा लेने की बात हो रही है ना, वर्षा लेने के लिए ना लायक हूं, मुझे लायक बनाओ। पहले क्या करो, हे प्रभु आए तो हो, लेकिन नालायक को पहले क्या बनाओ, लायक बनाओ, वर्षा लेने के लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तो मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं और तुम्हारे में मनुष्य तो हो। मनुष्य दैवी गुणों वाले भी होते हैं, मनुष्य आसुरी गुणों वाले भी होते हैं, देवताओं में दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे, किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को सच्चा सच्चा मनुष्य। झूठा झूठा मनुष्य कैसा होता है? जो अंजाम कुछ और करता है, करता है कुछ और, कहता है कुछ और करता है कुछ और, वो हुआ झूठा झूठा मनुष्य। और इन लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? सच्चा सच्चा मनुष्य, जो कहा जैसा अंजाम किया, जैसी प्रतिज्ञा की वैसा ही करके दिखाया। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो उनको कहा जाता है इनह्यूमन, इनह्यूमन कहा जाता है जानवर को, जो ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है, जानवर है। मनुष्य जानवर में क्या अंतर है? नाम ही पड़ा मनुष्य, मनु की औलाद मनुष्य। मनु नाम क्यों पड़ा? मनन चिंतन करने वाला मनु। मन हो और मन का उपयोग न करे, मन बुद्धि का उपयोग न करे तो वो मनुष्य कैसा? तो पहला मनुष्य मनु, जो मन ही है, मन के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो मन हुआ पहला ब्रह्मा। पहले रखा किसको? ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा है वो अपना मन चलाए, संकल्प शक्ति चलाए, तो ब्रह्मा ब्रह्मा है, नहीं तो बैल है। अगर मनन चिंतनशीलता नहीं है तो ब्रह्मा को ब्रह्मा कहा जाएगा? फिर ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाएगी? सत संकल्प से सत सृष्टि रची जाती है। तो सत्य असत्य का ज्ञान तो होना चाहिए। तो इनह्यूमन कहा जाता है जानवर को। अभी तुम समझते हो हम जैसे जानवर मिसल हैं, हमारी चलन जानवरों मिसल थी। दैवी गुण नहीं थे तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य लक्ष्मी नारायण, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, बल गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, माने पावन राजाएं कैसे बनते हैं, फिर पतित राजाएं वो कैसे बनते हैं, यह राज कोई जानते नहीं कि वो पावन कैसे बने और फिर पतित कैसे बने और पतित से फिर पावन कैसे बनते हैं। इस राज को कोई नहीं जानते, वो है भक्ति मार्ग। जो नहीं जानते, जो नहीं जानते कैसे का जवाब, वो हुए भक्ति मार्ग। ये नहीं कि द्वापर कलयुग में रहने वाले ही भक्ति मार्ग के हुए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो इस कैसे का जवाब नहीं जानते कि पतित कैसे बने और पावन कैसे बने, तो वो हुए भक्ति मार्ग के भगत। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, कैसा समझाए कि कैसा बनाते हैं, ऐसा इन लक्ष्मी नारायण जैसा, ऐसा मन हमारे सामने हो तो हम जाने। कह दे कि जड़चित्र, तो जड़चित्र जैसा बनना है क्या? फिर कैसा बनना है? हमारे सामने सैंपल होना चाहिए। सैंपल हो तो बच्चे बने। तो कौन सैंपल, कौन सा सैंपल है? कहाँ है चैतन्य चित्र? सामने, सामने वाले की डोंक लगे तो भाग जाए डरा पूछ करके। अच्छे अच्छे भाग जाते, फिर आते ही नहीं लौट के। कहाँ है सामने, कहाँ है? तंबूरा का अकेला बैठा हो उसको कहेंगे सामने लक्ष्मी नारायण है? है? लक्ष्मी नारायण के संकल्प, लक्ष्मी नारायण की वाचा, लक्ष्मी नारायण की कर्मणा, दोनों की बराबर होगी या कि जैसी होगी कि विपरीत होगी? तो सामने है, है? है सामने अभी। अच्छा चलो भाई, आ गया सतयुग है। संगम युग क्या? संगम युग में ऐसे लक्ष्मी नारायण हमारे तुम्हारे सामने हैं? हैं? अरे हैं? फिनिशिंग नहीं हुई है, बन रहा है नहीं सामने, अभी अभी बन रहा, अभी असुर है, अभी असुर से देवता बन रहे हैं, अभी है नहीं। ले दो बात हो गई, राममूर्ति भाई कह रहे हैं कि अभी बन रहा है, और ये सूर्य भाई कह रहा है कि नहीं हमारे सामने है। अच्छा, सूर्य भाई के तो सामने हो गए,
हमारे सामने है,
आह सामने है,
लक्ष्मी
ले ये हैं? हैं? ज्ञान और गुण दोनों होते हैं तो दिव्य गुण दिखाई पड़ते हैं, हैं? अभी दिखाई पड़ने लगे, अब तो सत्युग आ गया, आप पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं, ब्राह्मणों का पुरुषार्थ पूरा हुआ, हैं? लक्ष्मी नारायण तो विष्णु बन गए, अब संस्कार स्वभाव सब मिल गए, वाह बहुत बढ़िया निर्णय किया। जब लक्ष्मी नारायण सामने हो जाएंगे फिर तो कुछ समझाने की दरकार नहीं रहेगी, फिर सोते ही समझेंगे, बोल बोल करने की भी दरकार नहीं रहेगी, सामने तो नहीं है, हाँ बुद्धि से खींच सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, 66 की वाणी है, तो 76 में जाकर के ये वाणी पूरी होती है, 76 में लक्ष्मी नारायण बुद्धि की आंख से प्रत्यक्ष हमारे सामने हो सकते हैं, कोई कोई बच्चों के सामने बाबा के महावाक्यों के आधार पर, वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, वो क्या पुरुषार्थ ऐसा करते हैं, वो भी बुद्धि की आंख से सामने देख सकते हैं। तो बोला ये लक्ष्मी नारायण सामने है, 76 से ये वाणी पहले जब बोली गई तब तो जड़ चित्र सामने है, और 76 के बाद क्या कहेंगे, हैं? चैतन्य चित्र भी सामने होने चाहिए, लेकिन बुद्धि की आंख के सामने, इन स्थूल आंखों के सामने की बात नहीं है, क्योंकि स्थूल आंखों के सामने जब दोनों हो जाएंगे, राधा कृष्ण का स्वयंवर हुआ माने लक्ष्मी नारायण हुए, और लक्ष्मी नारायण हुए माने ब्राह्मणों का पुरुषार्थ संपन्न स्टेज पर पहुंचा, ब्राह्मणों का संगठन तैयार हो गया, माला बन गई, तो क्या कहेंगे अभी सूर्य बाबू, सामने है या नहीं है,
सामने तो है।
इन आंखों के सामने, बुद्धि की आंखों के सामने है, अभी इन आंखों के सामने नहीं है, है? कोई कोई बच्चों की स्थूल आंखों के सामने भी है, कोई कोई बच्चे हैं जिनकी स्थूल आंखों के भी सामने हैं, हैं 76 से
है?
हाँ भल गाते भी हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित कैसे होते हैं, कौन सा पुरुषार्थ करते हैं वो पता नहीं, तो वो हुआ भक्ति मार्ग, जिनको पता नहीं, बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, कर्म तो ये देवताएं भी सत्युगों में करते हैं, परंतु वहां पतित कर्म नहीं करते, कहां? हाँ सत्युग में कर्म करते हैं लेकिन पतित कर्म नहीं करते, कहां नहीं करते, सत्युग में नहीं करते, अभी तो सत्युग नहीं है, अभी तो संगम युग है, तो संगम का मतलब ही है कलयुग और सतयुग दोनों का मेल। संगम का मतलब ये है अभी अभी सतयुग ऊंची स्टेज और अभी अभी कलयुग नीची स्टेज, तो कहा गया संगम अभी अभी काला अभी अभी गोरा। तो सतयुग में देवताएं कर्म तो करते हैं परंतु पतित कर्म नहीं करते। तो सतयुग में पतित कर्म नहीं करते, क्या यहां करते हैं? है? संगम में करते हैं क्या? हाँ करते हैं, करते हैं मना 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 क्या
दुख देता है, दुख लेता है,
दुख देते हैं, दुख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जो हमारे सामने सैंपल है बुद्धि की आंख के सामने, वो भी दुख देते हैं, दुख लेते हैं, तो हम भी ऐसे ही बनेंगे है? तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण पतित कर्म नहीं करते, इसका मतलब कहाँ करते हैं है? कलयुग में करते हैं। अभी कौन सा युग है?
संगम
युग। हमारे लिए संगम युग है, तो फिर पतित कर्म कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उन्हें लक्ष्मी नारायण में ही परमात्मा वास करता है। तो जब उनमें परमात्मा वास करता है तो हमें पतित कर्म कैसे दिखाई पड़ेगा? क्योंकि हमारी तो भावना परमात्मा की है, उनमें दैवी गुण है। ठीक ही काम करने वाले ही स्वर्गवासी बन जाते हैं, जो ठीक ही काम करने वाले कलयुग में होते हैं वही सतयुग में जाकर क्या बन जाते हैं? स्वर्गवासी बन जाते हैं, सुख की दुनिया के वासी बन जाते हैं। नरकवासी से माया छींची काम कराती है, तो माया छींची काम कराती है और बाप अच्छा काम कराते हैं। अब भगवान बैठे श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छींची काम नहीं करो, ये समझना है कि देवताएं पतित से पावन कैसे बने और पावन से पतित कैसे बने। तो ऐसे छींची काम मत करो जो माया कराती है। माया जो कर्म करना सिखाती है वो देवभान में रह करके कर्म करना सिखाती है, खुद भी देवभान में रहती है, दूसरों को भी देवभानी सिखाती है, देवभानी बनना, तो उसे छींची कर्म हो जाता है। और बाप कैसा कर्म सिखाते हैं? कमल फूल समान जीवन, जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन बुद्धि से निर्लिप्त रहता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं, उन हठयोगी सन्यासियों की श्रेष्ठ मत नहीं कहेंगे, वो तो हमें कायरता की मत देते हैं कि कीचड़ की दुनिया ही छोड़ दो, क्योंकि वो कीचड़ की दुनिया में रहकर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाप हमको श्रेष्ठ मत देते हैं कि तुम रहो भल कीचड़ की दुनिया में, कर्म करो कीचड़ की दुनिया में, लेकिन बुद्धि से उपराम हो जाओ, बुद्धि डिटैच हो जाए। तो जिस कार्य में मन बुद्धि डिटैच होती है उसका कर्म बंधन नहीं लग सकता। तो देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में, ये भी तुम्हारे में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने वाले देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन लेकिन कर्म कैसी स्थिति में रह करके करते हैं? हैं? अथक भी क्यों, कैसे होते हैं अथक? हम क्यों थक जाते? क्योंकि आत्म की स्थिति में रहने से थकान देह का भान ही नहीं होगा, क्योंकि अपने को आत्मा समझ लिया। तो तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है। माला किस लिए बनती है? क्योंकि जानने वाले भी नंबर वार हैं। जानना अर्थता अर्थात ज्ञान, ज्ञानी बनना। तो नंबर वार ज्ञानी बनते हैं तो माला भी नंबर वार बन जाती है। आठ की व 108 की करके 16108 की भी कहें, वो भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16000 निकले तो क्या हुआ? क्वार्टर परसेंट भी नहीं गएंगे। क्वार्टर परसेंट क्यों कहा है? कितने करोड़ मनुष्य हैं? है 500-600 करोड़ में क्वार्टर परसेंट, चौथाई, 16000 चौथाई हुए। हाँ, 500 करोड़ की बात नहीं है। 500 करोड़ में कोर्टों में से तो कोई निकल आए, उन 500 करोड़ पुरुषार्थ करने वालों में से तो कोई कोई निकल के आ गए। लेकिन अब जो निकल के आए उन कोर्टों में से बात है, यानी कोई 2 करोड़ आत्माएं हैं सतयुग की जिन्होंने संदेश लिया तो है, लेकिन उनमें से निकलती कितनी है? क्वार्टर परसेंट भी नहीं। क्योंकि 2 करोड़ तो सतयुग की जो प्रजा होगी लास्ट जन्म की, वो प्रजा वर्ग होगा। यहां तो बाप राजा बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो उन पुरुषार्थ करने वालों की बात है कि उन पुरुषार्थ करने वालों में से क्वार्टर परसेंट भी नहीं कहेंगे 16108। जितने अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्रह्मा का ज्ञान लेकर के, ब्राह्मण बन करके देवता बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों में से पुरुषार्थ देवता बनने का करने वाले और 16000 की लिस्ट में आने वाले क्वार्टर परसेंट भी नहीं, यानी चौथाई भी नहीं है। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप तो 16000 का तो लक्ष्य भी नहीं देते। लक्ष्य कौन सा देते हैं? लक्ष्य देते हैं फर्स्ट क्लास नहीं तो सेकंड क्लास माला में आ जाओ, थर्ड क्लास माला का तो लक्ष्य भी नहीं देते। क्योंकि 16000 में राज परिवार की आत्माएं तो होंगी, लेकिन वो प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे, राजा रानी उनमें से बहुत तेरे हैं जो बनेंगे ही नहीं। बहुत से राजकुमार राजकुमारी ऐसे होते हैं, राजकुमार राजकुमारी तो कहलाते हैं लेकिन राजा ही प्राप्त नहीं करते। तो बाप कितना ऊंच बढ़ाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, तापारी खुशी, जिसका पारावार नहीं। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया, समझते हो या नहीं समझते हो? अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट मना है, स्वीकार किया है। क्या समर्पण पत्र दे दिया सबने लिख के क्या बाप को? है समर्पण पत्र लिख के दे दिया? झूठ है झूठ मेरे ही झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। अब तो बुद्धि की बात है, तो बुद्धि से ही तुम्हें वर्षा मिल जाएगा फिर। बुद्धि से ही वर्षा मिल जाएगा फिर, प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा। उनका तन मन धन अर्पण करना है, उन्होंने भी हाँ तन मन धन हमने बुद्धि से अर्पण कर दिया। तो तुमने तन मन धन बुद्धि से अर्पण कर दिया तो बाप तुम्हें बुद्धि से दे देगा, याद करते रहो, खुश हो जा। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट तो जब करें जब तुमने अर्पण किया हो लो तो वो स्वीकार कर रहे हैं, लाओ। उसको कहते हैं अडॉप्ट करना, माना स्वीकार करना। जब दिया ही नहीं तो स्वीकार करने की बात कहाँ। हाँ, जिन्होंने दिया, जिन्होंने अर्पण किया अपने को, तन को, मन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंधों को, तो बाप ने उनका स्वीकार किया। गड़बड़ हुई हो क्यों भाई, क्या गड़बड़ हुई हो है? सीताराम क्या कह रहे भाई, जादूगर तो है शिव बाबा, जादू चला रहे हो जब दूर बैठी हो हाँ? हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, कोई हद के बाप ने अडॉप्ट नहीं किया है। दो चार बीस पचास सौ दो सौ बच्चों के बाप ने अडॉप्ट नहीं किया है। किसने अडॉप्ट किया है? बेहद के बाप ने। हम उनके बने हैं, उसने हमको अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है और हम उसके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। जब हम उसके बन गए माने उसकी गोद ले ली, और जिसकी गोद ली वो है अमेरिका का रॉकफेलर, जो नाम क्या दे दिया, रॉकफेलर। रॉक माने चट्टान, चट्टान जैसी जिनकी पत्थर बुद्धि है, ऐसी पत्थर बुद्धियों की पत्थर बुद्धि को भी फेल करने वाला, तोड़ने वाला। पत्थर को तोड़ के क्या बनाई देता है, पारस बुद्धि। ऐसे रॉकफेलर बाप की हम संतान बन गए। तो चिंता मत करो, कैसे भी पत्थर बुद्धि हो गए, अगर अर्पण हो गए तो क्या हो गए, दर्पण हो जाओगे, ज्ञान का दर्पण। ये चिंता नहीं करनी है कि हमारी बुद्धि क्या करे, ऐसी बुद्धि हो गई हमारी काम नहीं कर रही है, जो नहीं करना चाहिए सो ही कर देते हैं बार बार, तो इसकी चिंता मत करो। सिर्फ करना क्या है, अर्पण में हो जाओ, अर्पण हो जाओ और बाप स्वीकार कर ले, बस फिर कोई चिंता नहीं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता है तो हम हेवन में होना चाहिए। हेवन माना सुख, सुख की दुनिया में होने चाहिए या रोने की दुनिया में होना चाहिए? अरे अरबपति का बच्चा, अरबपति ने गोद ले लिया जिस बच्चे को, वो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा है? या ये कहेंगे कि बड़ा हो जाएगा तब वर्षा मिलेगा उसको अरब का, खरब का, तब तक तो वो दुखी होगा, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहेगा ही, ऐसे कहेंगे? नहीं, गोद ले लिया, बाप का बच्चा बन गया तो समझा जाता है ये उसकी अरब खरब मिल्कियत का मालिक बन गया उसी समय से। तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए है? दोनों में है। अब है, पुराने बापों की गोद में चले जाते हैं और नए बाप की गोद में आएंगे, कभी उधर जाते हैं कभी इधर। जब संगम गए तो उसका मतलब क्या हुआ, कभी पुरानी दुनिया में पांव रख देते और कभी नई दुनिया में पांव रख देते। तो ये तो अपने हाथ की बात है, क्योंकि शूटिंग तो फिर भी मन बुद्धि से हो रही है और प्रैक्टिकल भी हो रही है, प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा हो रही है। तो जब अब शूटिंग ऐसी हो रही है तो हम पुरानी दुनिया में पांव रखने की शूटिंग करें क्यों? पुरानी दुनिया माने दुख की दुनिया, दुख की दुनिया में जाना माना देह के बाप की औलाद बनना, या जो पुराना बाप है उसकी औलाद बनना। जब नई दुनिया है, नया ज्ञान है, नया बाप मिल गया, तो फिर स्वर्ग का अनुभव करना चाहिए ना, सुख का अनुभव करना चाहिए ना। तो बोला, हम उनके बने हैं, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बनने के लिए लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। क्या बताया? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, बच्चे कहेंगे बाबा हम तो बन जाएं, लेकिन आप भी तो बन जाओ पहले। हाँ, यह बात बिल्कुल पक्की कही। क्या कही? हाँ, कि हम तो बन जाएं, लेकिन बाप भी तो बन जाए, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, डबल अहिंसक है, न स्थूल हिंसा करे न सूक्ष्म, डबल अहिंसक। आप बन जाओ तो हम भी बन जाएंगे। वाह भाई, बात बहुत पते की गई। बाप बन गए, डबल अहिंसक बन गए, न पवित्रता की काम का टारी बाप चलाएगा, न चलाता है और न चलेगा, और न स्थूल हिंसा करता है, चमाट टमाट तो नहीं मार देता है, नहीं मारता। अच्छा, मतलब अब धर्मराज का पार्ट वार्ट नहीं करना है ना, धर्मराज का पार्ट अब नहीं करना है कोई। हाँ, अब कुछ नहीं, वो मारता करता नहीं है। बाबा ने बोला है, कृष्ण के गुण अलग, देवताओं के गुण अलग और बाप के गुण अलग हैं। क्या तुम्हें देवता बनना है या बाप बनना है? देवता बनना है, तो तुमको तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही पड़े। और बाप का ये टाइटल नहीं है। क्या सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कृष्ण जैसे बच्चों के टाइटल हैं। जो कृष्ण जैसा बच्चा बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, बाप अगर ये टाइटल धारण कर ले सर्वगुण संपन्न, तो 500 करोड़ की दुनिया में जो अवगुण संपन्न असुर बैठे हुए हैं, वो स्वर्ग लाने देंगे? तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिल सकेगा। तो उनसे मुकाबला कौन करेगा, उनका विनाश कौन करेगा? क्या तुम्हारे धर्म पिताएं करेंगे? इब्राहिम, बुद्ध, क्रिस्ट, उन्होंने तो विनाश किया ही नहीं। अवगुणों का विनाश नहीं किया, अधर्म का विनाश नहीं किया, अपने धर्म की स्थापना कर दी, भरे हुए घड़े में और थोड़ा सा ऐड कर दिया। अरे जब पुराने जल का घड़ा खाली नहीं करोगे और नया जल उसमें भरते जाओगे, तो भरा हुआ दूध का घड़ा हो उसमें एक बूंद अगर विष होगा तो सारा ही विष ही रहेगा ना, नई पवित्र दुनिया कहां से बन जाएगी? तो खाली करने की हिम्मत और किसी में नहीं है सिवाय बाप के। अब गुणों से इस दुनिया को खाली करना बाप का काम है, असुरों से इस दुनिया का खात्मा करना ये बाप का काम है। तो बाप को भी तुम बनाना चाहते हो क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक। अरे बाप संपूर्ण अहिंसक बन जाएगा, हिंसा ही नहीं करेगा किसी प्रकार की, तो ये असुर खत्म होंगे क्या? है ये प्यार से खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, विष को विष से मारा जाता है। सांप काले ने किसी को काट लिया हो तो उसको दूध पिलाने से जिंदा हो जाएगा? है दूध पिलाने से काले सांप का काटा हुआ कभी जिंदा नहीं हो सकता। क्या करना पड़े? उससे भी तीखा विष वाला इंजेक्शन उसको लगाना पड़े, तब खलास होगा। लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे नहीं लोहे को लोहे से क्यों काटे। लोहे को काटने के लिए तो उसके ऊपर खरबूजा रख देना चाहिए। खरबूजा खुद ही कट जाएगा। खरबूजा क्या काटेगा छुरी को, लोहे को। तो बाप को ऐसा सख्त रूप धारण करना पड़े, बाकी बच्चों को वो कार्य नहीं करना है। शंकर का कार्य शंकर को करने दो, डायरेक्शन दे दिया वाणी में, तुमको मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। और करोगे अपनी मनमानी, नहीं मानोगे तो जानते हो क्या अंजाम होना है। अगर श्रीमत के बरखिलाफ चले तो रिजल्ट क्या होगी, सफलता या असफलता? असफलता ही हाथ लगेगी, टाइम भी वेस्ट होगा, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी और बाप की नजरों से भी नीचे उतर जाएंगे। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े बच्चों को। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इनों के लायकी की महिमा की जाती है। किनों के? लक्ष्मी नारायण जो जगन्नाथ मंदिर में और श्रीनाथ मंदिर में काले चेहरे वाले दिखाए जाते हैं, इनकी लायकात की महिमा की जाती है। लाइक, लाइक मानो ना लाइक और लाइक, लाइक माने योग्य, एबल और ना लाइक माने अनेबल। तो लाइक की इनको लायकात की महिमा की जाती है, एबिलिटी की महिमा की जाती है। ये नहीं कहा जाता ये तो काले मुंह वाले हैं, ये तो काले कर्म करने वाले हैं। कोई कहता है मंदिर में जाकर के? क्यों नहीं कहते? जब उनका काला मुंह है तो कहना चाहिए ना, किसने किया इनका काला मुंह? इन्होंने जरूर काले कर्म किए होंगे। हे भगवान, तुम काले कर्म करने वाले हो, तुम्हारा काला मुंह बना दिया गया है, इसीलिए ऐसे मंदिरों में जाके क्यों नहीं कहते? उनका भाव नहीं होता काला कर्म करने का, उनका भाव होता है विश्व का कल्याण करना है। तो विश्व का कल्याण करने का भाव अंदर बैठा हुआ है, इसलिए विश्व का कल्याण ही होना है, अकल्याण हो नहीं सकता उनके द्वारा। उनके लायकी की महिमा की जाती है। लक्ष्मी नारायण जो काले मुंह वाले दिखाए जाते हैं मंदिरों में, जगन्नाथ को भी काला मुंह वाला दिखाई देते हैं, तो उनकी महिमा करते हैं, नालायकी की महिमा, नालायकी की बखान नहीं करते। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। कब बनते हैं? 84 जन्मों के बाद, आफ्टर 84 बर्थ नालायक बनते हैं। ये नहीं कहा 83 बर्थ आफ्टर। वो लक्ष्मी नारायण नालायक कब बनते हैं? 84 बर्थ के बाद नालायक बनते हैं। इससे पहले के जन्मों में क्या रहते हैं? लायक ही रहते हैं, दुनिया को लायकात ही सिखाने वाले रहते हैं। तुम हो ब्राह्मण चोटी, जब दलदल में पूरे ही डूब जाते, सारा विराट मनुष्य सृष्टि रूपी मनुष्य जो है दलदल में डूब जाता, सारी मनुष्य सृष्टि, तब ब्राह्मण चोटी ही चोटी मात्र ऊपर रहती है। चोटी माने सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, चोटी माने टॉप मोस्ट, पुरुषार्थ करने वाला वही ऊंची स्टेज में थोड़ा रहता है। तो उस चोटी को पकड़ करके सारे सृष्टि रूपी पुरुष को, विराट पुरुष को बाप आकर के उठाते हैं, तो वो पहले डूबेगा या सबसे बाद में डूबेगा? पहले डूबेगा, फिर तो 83 जन्म से पहले ही, 84 जन्म से पहले ही डूब जाना चाहिए। फिर तो जैसे इब्राहिम 2500 वर्ष के बाद ऊपर से नीचे आया, तो सबसे पतित तो उसको होना चाहिए, क्योंकि वो पहले डूबता है, तो उसी में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वो तमो प्रधान बन जाता है द्वापर युग के आदि में, त्रेता के अंत में। लेकिन नहीं, यहाँ संगम युग में जिसने परमात्मा बाप से जितना जास्ती लगन लगाई, एक बाप दूसरा न कोई, उसकी वो पावर अनेक जन्मों तक चलेगी। जितना कम लगन लगाई, उतनी ही कम समय तक वो पावर चलेगी। तो कोई तो ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म तक सुख में ही रहते हैं, उनको दुख की महसूसता होनी नहीं है, लेकिन जब तक रात न हो तब तक दिन का कोई मूल्य नहीं। तो आखिरी जीवन में उनको भी अति से अति दुख भोगना जरूर पड़े, सबसे जास्ती पतित बनना पड़े, तो एक जन्म उनका भी दुखी होता। इसलिए बोला 84 बर्थ के बाद ये नालायक बन जाते हैं। ये नहीं कहा 83 वर्ष के बाद नालायक बन जाते हैं, ये नहीं कहा कि 84 वर्ष लेते ही नालायक बन जाते हैं, नहीं, 84 वर्ष के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, यानी कोई का तो गिरना धीरे धीरे होता है और कोई का गिरना तीव्र गति से होता है। ये द्वापर युग से गति तीव्र और मध्यम का हिसाब है। जिन आत्माओं ने यहां संगम युग में जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, वैसा ही उनका हिसाब बन जाता है। अगर एक बाप दूसरा न कोई, ये स्टेज पक्की है प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो आत्मा भल शूटिंग का चक्कर चलता रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तमो प्रधान शूटिंग भल होती रहे, लेकिन वो आत्मा लगन के प्रभाव से, याद के प्रभाव से अपने को उतना जास्ती नीचे नहीं गिरने देगी, कवर करती रहेगी। तो ऐसे धीरे धीरे कला कम होती जाती है, एकदम नहीं होती। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। 1250 वर्ष में कितनी कला कम हुई? सिर्फ 2 कला। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, यहां भी उसकी शूटिंग होती है। राम बाप आया और उसके हम बन गए, अपने को उसके अर्पण कर दिया, और फिर हम रावण राज्य के अंडर में चले, राम बाप के अंडर में न चले, तो 100 गुना 1000 गुना 1000 गुना बोझ चढ़ेगा, या उतना ही बोझ चढ़ेगा जितना दुनिया वालों के ऊपर चढ़ता है? जरूर जाति चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया को तो ज्ञान का पता ही नहीं। तो रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती जाती है, और जब तक राम राज्य में हो तो गिरना तो राम राज्य में भी है, यानी सतयुग त्रेता में भी गिरना तो होगा, लेकिन आस्ते आस्ते गिरोगे। तो शूटिंग पीरियड में भी ये हिसाब है, बाप के बने और फिर बाप की बात न मानी, उल्टी चलन चली, तो क्या होगा? रावण राज्य में चले गए, यही कहा जाएगा कि नहीं? किसके कंट्रोल में चले गए? अरे राम के कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में है? जरूर रावण के कंट्रोल में, या तो मन मत पर है या मनुष्यों की किसी मनुष्य की मत पर है। तो रावण राज्य में जब चले जाते हो तो कला तेजी से नीचे गिरती है। जब तक राम के कंट्रोल में, राम के राज्य में रहते हो तब तक कला धीरे 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 नीचे उतरती है। वो चाहे संगम की शूटिंग की बात हो और चाहे 5000 वर्ष के ड्रामा की बात हो, तो ग्रहण लग जाता है रावण राज्य में। जैसे सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं तुम बच्चों को भी ग्रहण लगता है। सिर्फ तुम बच्चों को ही ग्रहण लगता है सितारों को, और सूरज चांद को ग्रहण नहीं लगता है। कौन से सूरज को, कौन से चांद को? क्या ज्ञान सूर्य ज्योतिबिंदु शिव बाप को ग्रहण लगता है? अरे उसको तो ग्रहण लगने की बात ही नहीं, उसको कैसे माया का ग्रहण लगेगा? सूर्य देवता है नमः, चंद्र देवता है नमः कहा जाता है। सूर्य चंद्र को देवता कहते हैं तो जरूर देव आत्माओं की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। यानी वो ज्ञान सूर्य शिव, तो वो बच्चा हुआ ज्ञान सूर्य, और चांद कौन हुआ? ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, यानी कृष्ण की सोल, जिसका नाम है कृष्ण चंद्र, 16 कला संपूर्ण बनता है, और फिर कलाहीन भी बनता है। तो सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं तुम बच्चों को ही ग्रहण लगता है। ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, तो सितारों को भी, माया का ग्रहण सबको लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अभी राम राज्य है या रावण राज्य है? रावण राज्य। तो ग्रहण तो सबको लगता है, फिर अंतर क्या है? हैं? सितारों में और सूरज चांद में अंतर क्या हुआ? वास्ट डिफरेंट है या थोड़ा मोटा है? वास्ट डिफरेंट है, बहुत ज्यादा है। कहां ज्ञान सूर्य और कहां सूर्य से रोशनी लेने वाला चंद्रमा? चंद्रमा तो पृथ्वी वालों के बहुत नजदीक रहता है, सूर्य भले दूर रहता है लेकिन सूर्य की रोशनी से सारा मनुष्य का जीवन चंद्रमा से भी जास्ती प्रभावित होता है। सितारों से इतना प्रभावित नहीं होता। तो सूरज चांद को भी ग्रहण पूरा लगता है और लगा हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि अभी ग्रहण नहीं लगा हुआ है। यानी सूरज चांद का पार्ट बजाने वाली जो चैतन्य आत्माएं हैं राम कृष्ण की, माना बाप और दादा, मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता और दादा माने मनुष्यों, मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा भाई, कौन? फर्स्ट बच्चा कृष्ण बच्चा, दोनों को ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे नहीं प्रश्न करना चाहिए कि जब इनमें बाप आता है तो इनको तो संपूर्ण हो जाना चाहिए। अरे ये तो उंगली उठा ली लेकिन उनके पुरुषार्थ की गति को नहीं देखा, उनके पुरुषार्थ की गति कितनी तीक्ष्ण है। दायन है ब्रह्मासु विष्णु, कितनी देर में? एक सेकंड में ब्रह्मासु विष्णु बन सकता है। इसलिए अद्वैत वाणी में बोला कि बाप दादा चाहें तो वापस जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं इस पतित दुनिया में, पतित सृष्टि में। क्योंकि बच्चे से पतित सृष्टि पतित दुनिया विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो उनको कौन निकालेगा। तो ऐसे बाप दादा के ऊपर भी उंगली उठाने वाले बच्चे हैं। गधा को नोन दिया, गधा को नमक दिया, अब गधा कहता है मेरी आंखें फोड़ दी। एक कहावत है कि जानवर को नमक खिलाया जाता है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, भूख अच्छी लगने लगती है। और जानवर बुद्धि है, वो समझता है कि ये तो हमारी आंखें फोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही गधा बुद्धि जो बच्चे हैं उनकी भी यही हालत है। बाप तो आकर के कल्याण करते हैं और बच्चे समझते हैं ये हमारा अकल्याण कर रहे हैं। तो सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है, चाहे सितारे हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण होता रहेगा। जब सूरज चांद को ग्रहण लगता है तो भंगी क्या कहता है, देदान तो छूटे ग्रहण। कौन कहता है, करनी घोड़ ब्राह्मण भी कहते हैं तो भंगी भी कहते हैं। भंगी माने मेहतर, स्वीपर, गंद उठाने वाला। तो बाप क्या बन करके आए हैं, हैं? बाप तुम्हारी 63 जन्म की गंध साफ करने आए हैं। वो भी कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब दान दो तो तुम्हारा ग्रहण, सारी सृष्टि का ग्रहण छूट जाएगा और सूरज चांद का भी ग्रहण, सूरज चांद के ऊपर भी जो माया का ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा। ऐसे ग्रहण नहीं छूटेगा, देह दान तो छूटे ग्रहण। तुत्त दान महाकल्याण, देर भी नहीं करो, डिले इज डेंजरस, पता नहीं कल से क्या होने लगे। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तब कोई ये कहता है कि दान अभी नहीं करेंगे, 4-6 दिन के बाद कर लेंगे, है? जब ग्रहण लगा हुआ है सूरज चांद को तो दान कब करना पड़े, तुरंत तुरंत दान महाकल्याण। नहीं तो क्या होता है, डिले डेंजरस। तो तुरंत दान जो किया जाता है जब जरूरत है तब दान किया तो महान कल्याण होता है। अब ग्रहण होता रह गया, फिर तुमने दान किया, फिर क्या कोई फायदा है, हैं? फिर सूरज चांद को कोई फायदा, उनका तो काम निकल गया। जब अटकी भीड़े थी तब तो तुम सहयोगी नहीं बने, अब बाद में तुम जब उगर गया उसकी बन गई जिंदगी, हैं? जो गरीब है वो साहूकार हो गया, फिर तुमने साहूकार को दे जाके दान दे दिया, फिर क्या फायदा हुआ। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। याद से ही ग्रहण उतरेगा, जब याद से ही ग्रहण उतरेगा तो दान काय कर दें, हैं? हाँ? जब याद से ही ग्रहण उतरेगा तो दान काय कर दें, दान किस बात का दें, याद से ग्रहण उतर जाएगा, याद, जब याद से ग्रहण उतर जाएगा सूरज चांद का और सारी दुनिया के ऊपर माया का जो ग्रहण है वो उतर जाएगा तो हम दान क्यों दें, दान देने की क्या बात, काहे का दान दें, किसी भी चीज का, ये नहीं कहा काहे का दान, तन का दान, धन का दान, मन का दान, ज्ञान का दान, जो भी चीज तुम्हारे पास कचरा है किसी का भी दान, दे दान तो छूटे ग्रहण। और ग्रहण रहते रहते दान दिया तो उसका महान पुण्य बनता है, अब ग्रहण उतर गया तो महान पुण्य, महान कल्याण नहीं कहा जाएगा। ग्रहण उतर जाएगा कोई भी पाप भी नहीं करो। जिस समय सूरज चांद के ऊपर ग्रहण लगता है तो जाकर के गंगा किनारे बैठते हैं, भगवान की याद करते हैं। तो अभी सूरज चांद के ऊपर भी ग्रहण चढ़ा हुआ है, उनकी अपनी आत्मा का ग्रहण नहीं है पाप कर्मों का, उससे तो वो उरण हो चुके, लेकिन बच्चों को संग के रंग में बच्चों को भी साथ ले जाना है। तो बच्चों का संग का रंग भी तो रामकृष्ण की आत्माओं को लगेगा नहीं लगेगा? अरे इब्राहिम बुद्ध कहे थे इतने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं सची पर आए, उनको भी इस दुनिया के संग का रंग लगा नीचे गिर गए। तो क्या रामकृष्ण की आत्माएं कोई सुप्रीम सोल है? नहीं, भले सुप्रीम सोल उनमें प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल ने उनकी गारंटी ली हुई है, बाकी ऐसे नहीं कि उनको संग का रंग नहीं लगता। तो बच्चे जो हैं पतित हैं, विकारी हैं, नीचे गिरे हुए हैं, माया के बंधन में बंधे हुए हैं, तो बाप को भी माया के राज्य में घुस करके लड़ाई लड़ करके बच्चों को निकालना है। तो दे दाम तो छूटे ग्रहण, ग्रहण उतर जाएगा, लेकिन अब कोई पाप न करो। क्या कोई पाप मन? अरे दान किसी दूसरे को देंगे तो क्या होगा? पाप हो जाएगा। अब हमारा लेन देन किससे होना चाहिए? एक बाप डायरेक्ट मिला तो डायरेक्ट बाप से ही लेन देन होना चाहिए, फिर दूसरों से हमारा लेन देन खत्म हो गया, क्योंकि दूसरों से हमारा संबंध ही नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंध बाप से। तो कोई पाप नहीं करो, क्योंकि इस दुनिया में सब पतित है, पतित को दान करेंगे तो खुद क्या बनेंगे? हैं? चलो हमने दान करने का काम तो अच्छा किया, लेकिन दिया किसको? पतित को दिया, या पतित चुराए ले गया क्योंकि हमने देर कर दी, देने में देर कर दी, पतित कोई चुराए ले गया, तो चुराए ले गया उसका तो पाप हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए? क्यों भाई? हैं? देर करी इसलिए बाबा ने चार अंजाम बताए हैं। कौन कौन से चार अंजाम? किनकी दबी रही धूल में, किनकी तो दबी रह जाएगी दे अभिमानी की मिट्टी में, किनकी राजा खाए, तो सरकार है या सरकारी तंत्र है या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो उठा ले जाएंगे। किनकी राजा खाए अधिकारी ले जाएंगे, और किनकी ले गई चोट्टा चोर चुराए ले जाएंगे। चोर डकैत भी तो होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने चुराए लिया, जब बाद में घर देखा तो पता चला अरे रिजल्ट, तो घर देखा तो बाद में पता चला कि अरे ये तो पहले ही चोरी हो गई। किनकी ले गए चोट्टा और किनकी आग जलाए, ऐसी आग जलेगी दुनिया में, काम की अग्नि भी जलेगी और स्थूल अग्नि भी जलेगी और क्रोध अग्नि भी जलेगी, तो उसमें सब भस्म हो जाएगा, किसी का कुछ भी रहना ही नहीं है। तो अब कोई ऐसा पाप ना करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। क्यों? तो जैसे ही बाबा मुरली चलाते हैं तो बोलते हैं रूहानी बाप, रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देह अभिमानी की स्टेज में रहकर के जो बाबा की वाणी सुनते हैं उनसे तो बात ही नहीं करते, उनको तो सुनाते ही नहीं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं।
तुम शांति।